योजनों ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी
कहानी। मेरा सौभाग्य था जो बाबा से मिलना हुआ, लेन देन हुई। जब मैं ज्ञान में आई, पहले ही दिन दादी निर्मल शांता और मम्मा वहाँ बम्बई में थे, तो मम्मा से तो अच्छी ही हमें लेन देन होती रही, क्योंकि मम्मा उस समय 7 मास बम्बई थी हमारे ज्ञान के आने के बाद। परंतु ब्रह्मा बाबा से ज्ञान में आते ही पत्र व्यवहार से लेन देन होती थी, क्योंकि जब हम ज्ञान में आते थे थोड़े ही रोज में टीचर्स बताती थी, अच्छा ब्रह्मा बाबा को अपना परिचय लिखो। तो आपका तो परिचय हमें मिला, परंतु बच्चे फिर अपना परिचय बाबा को देते हैं। तो हमने पत्र लिखा और उन दिनों में पत्र के साथ पासपोर्ट फोटो भी भेजते थे ऊपर लगा के। तो बाबा जैसे फोटो से या कुछ दादियों की एक दो वाक्य के रिकमेंडेशन से जैसे बाबा पहचान लिया और पत्र में लिखते रहे। तो क्योंकि अज्ञान में तो हम अपने आप को कुछ देखते नहीं, जानते नहीं, कुछ स्पेशली विशेषताओं को हम देखते नहीं है। तो बाबा जो पत्र द्वारा हमें अपना अपना परिचय, पर्सनल परिचय, आत्मा का परिचय तो टीचर्स देती है, परंतु पर्सनल पर्सनालिटी का परिचय बाबा जो लिखते रहे, तो समझ सकते हैं कि बाबा ने हमें बहुत अच्छी रीत से जाना था और उसी अनुसार पत्र लिखते रहते थे। तो मम्मा के द्वारा ज्ञान मिला तो बाबा हमें मम्मा का फूल कहता था, मम्मा की क्रिएशन। और उन दिनों में निर्मल शांता कुछ एक साल के अंदर ही उनकी ट्रांसफर हुई कलकत्ता में, और दादी जी मुंबई में आई थी। तो क्योंकि निर्मल शांता दादी ने अच्छी ही पालना की थी, हर संडे सारा दिन मैं सेंटर पर रहती थी और हॉस्पिटल में काम करती थी, इसलिए रोज सवेरे मुरली में तो नहीं आ सकती थी, शाम को आती थी। तो सभी ने समझा कि दीदी जा रही है, दादी निर्मल शांता जा रही है, तो शायद निर्मला को दुख होगा, परंतु हम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दादी गई, दूसरी दादी आई, तो फिर बाबा ने पत्र में नष्टो मोह का टाइटल दिया। फिर ज्ञान में आते ही जैसे उस समय हमारी इच्छा थी कि हम गांव में जाकर सेवा करें, परंतु मम्मा से हमने पूछा कि मम्मा मेरी इच्छा नहीं कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं इसी सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने कहा नहीं मम्मा, बाबा से जब मिलो आप बाबा से पूछना, क्योंकि उस समय मैं 3-4 मास ही ज्ञान में थी और ब्रह्मा बाबा से मैं 1.25 साल के बाद मिली। तो जब ब्रह्मा बाबा से मिली तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मेरी तो इच्छा नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करने की। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम तो डबल डॉक्टर हो, तुम्हें रूहानी और जिस्मानी दोनों डॉक्टरी करनी है, इसलिए कभी कभी पत्र में डबल डॉक्टर ऐसे भी टाइटल लिखते थे। दूसरा, मेरी इच्छा थी गांव में सेवा करने की, और मेरे लौकिक पिताजी चाहते थे कि कांदीवली में जहाँ वो रहते थे वहाँ ही मैं प्रैक्टिस करूँ और वहाँ के ही लोगों को लाभ दूँ। तो फिर मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा क्या करूँ, गांव में जाऊँ या मेरे पिताजी कहते हैं ऐसे कांदीवली में सेवा कर। तो बाबा क्या, कांदीवली भी तो गांवड़ा है ना, कांदीवली में शुरू कर। तो फिर मैंने कांदीवली में प्रैक्टिस शुरू की और मेरे सामने बाबा बंबई में एक बारी 2 मास रहे, एक बारी 1 मास रहे। तो जब ब्रह्मा बाबा आने वाले थे तो हमने अपनी शिफ्ट चेंज करनी, नौकरी चेंज कर ली। काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल में ही पहले मैटरनिटी होम में काम करती थी, फिर डिस्पेंसरी में काम शुरू किया और फिर ब्रह्मा बाबा आने वाले थे तो हमने कहा कि मॉर्निंग क्लास में तो नहीं जा सकूंगी, इसलिए हमने फिर शिफ्ट किया स्कूल्स में मेडिकल डॉक्टर इंस्पेक्टर के रीति से। तो रोज सवेरे मुरली में जा सकती थी तो सवेरे मुरली में जाएंगी, फिर वहाँ ही ब्रेकफास्ट करके काम पर जाएंगी, फिर शाम को आकर फिर बाबा से मिलते थे। ऐसे बाबा से मिलना जुलना क्लास करना तो होता ही था, और जब भी कुछ पर्सनल बातें होती थी तो पूछ लेती थी। तो उन दिनों में बम्बई में सिर्फ 2 सेंटर थे, एक म्यूजियम के पास रिगल सिनेमा वाटरलू में और दूसरा साइन में, और दोनों फ्लैट थे। तो रमेश भाई ने सोचा कि हमारा सेंटर ऐसा हो, आश्रम जैसा कोई बंगलो टाइप हो ताकि आश्रम का वातावरण लगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा कांदीवली के तरफ देखो, बोरीवली कांदीवली के तरफ मकान की प्राइसेस क्या है, क्योंकि शहर में तो प्राइसेस हाई होती है परंतु सबब में दूर मकानों की प्राइस कम होंगी। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि हमारे लौकिक पिता ने हमारी 2 बहनों की शादी में, 2-3 बहनों की शादी में उनको फ्लैट दिया था और मुझे तो शादी नहीं करनी है। तो और हमारे लौकिक पिता के मकान के पीछे ही उनका जमीन का प्लॉट एक था। तो उनको पूछने के पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मैं हमारे लौकिक पिता से ये बात पूछूं, जमीन का टुकड़ा जमीन देवे मकान के लिए। तो बाबा ने कहा हाँ पूछो, यदि तुम्हारा लौकिक बाप जमीन का टुकड़ा देगा तो अलौकिक बाप मकान बना देगा। फिर मैंने लौकिक पिता से पूछा तो कहे कि जमीन तो नहीं है, बहुत उन्होंने तो ऐसे ही कहा कि लड़कियां इतना नजदीक रहे अच्छा नहीं, मैं तुमको पैसा दूंगा तुम फ्लैट ढूंढो अपना। तो हमने ये देखा कि जो लौकिक पिता थे उनके कुछ संस्कार तो हमको मिले, क्योंकि हमारे लौकिक पिता बहुत डिसिप्लिन, बहुत पंक्चुअल, बहुत ऑनेस्ट वगैरह थे। तो कुछ संस्कार तो उनके हमें मिले, बाकी जो रहे थे अलौकिक पिता से मिल गया। तो फिर मकान ढूंढना शुरू किया। तो यही बाबा की मदद रही कि वैसे लौकिक में हम कभी अकेले नए स्थान पर नहीं जाते थे। 1940s-50s में जैसे जैसे माँ बाप ऐसे करते, कहाँ भी नए स्थान पर जाना होता था तो हमारा भाई आएगा या चाचा आएगा या चचेरा भाई आएगा, कोई ना कोई हमारे साथ आएगा। तो जब मेडिकल इंटरव्यू के लिए गई थी तभी भी मेरा चाचा साथ नहीं था, और अभी मकान ढूंढना था, अलौकिक तो नहीं मदद कर सकते हैं। तो फिर कभी कभी अकेले जाना होता था, कभी कभी कोई ब्राह्मण भी साथ में आते थे, मकान लिया और मकान ऑलमोस्ट तैयार हो गया था और ब्रह्मा बाबा मुंबई में थे, तो दादी प्रकाशमणि उनको मकान देखने के लिए ले आई, परंतु अभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फिट नहीं हुआ था, तो जैसे छोटा ही इनॉग्रेशन कर लिया, क्योंकि सिर्फ कारपेट डाला और कुछ लाइट वगैरह भी अभी फिटिंग नहीं हुई थी। बाबा आए और जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट थे कुछ उनको बुला लिया था, दिन के टाइम आए थे, तो बाबा जी ने देखा कि वहाँ कुमारियां काफी आती थी, जैसे योगिनी के सारी पांचों बहने वो लोग ज्ञान में आती थी, और दूसरी भी कुमारियां थी उस समय आई थी, तो बाबा पत्र द्वारा भी प्रेरणा देते थे कि कुमारियों को खड़ा करो आदि आदि, और सेवा के लिए मंग उल्लास दिलाते रहते थे, और हमें फिर निमित्त बना दिया वहाँ ही सेवा के लिए। तो वैसे ज्ञान में तो मैं 3-4 साल ही थी और संगत पर तो रही नहीं थी, कोई ट्रेनिंग तो उन दिनों में होती नहीं थी। तो फिर बाबा ने हमको कोई न कोई बहन देते रहे जो हमें मदद करती रही, क्योंकि मेरी मेडिकल प्रैक्टिस भी अब तक हमने डिस्पेंसरी शुरू कर लिया था उसी सबब में, और मकान भी वहीं फिर लिया जहाँ हमारा क्लिनिक था, तो समझो 10-15 मिनट के वॉकिंग थे, और हमारे लौकिक घर से सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग था जो सेंटर था। तो समझो वहाँ सेवा कर दी, तो देखा गया कि बाबा का जो हमारे में ट्रस्ट था, उस कारण जैसे हमें भी अपने में विश्वास आ गया, और जो जिम्मेवारी बाबा ने दी तो जिम्मेवारी के साथ साथ मदद भी मिलती रही, और दादियां भी थी ही, क्योंकि बम्बई में उस समय प्रकाशमणि दादी थी, रतनमणी दादी थी, शिलेत्राबेन थी और विजेंद्र दादी थी, सभी दादियां तो बम्बई में थी, काफी दादियां थी, तो शिलेंद्र दादी को हमारे साथ जैसे निमित्त बनाया, तो रोज दिन में 2 बारी फोन करना होता था सवेरे और शाम दादी को, और समाचार देना था, लेन देन करनी थी, कुछ भी प्रश्न होता था पूछते रहते थे, और मधुबन में भी साल में 1 बारी आना होता था, और बाबा से जो भी लेन देन करनी होती थी। तो बाबा की जैसे परखने की शक्ति बहुत विशेष थी, और 5 मिनट में एक व्यक्ति को आते ही 2-4 बात पूछकर उनका जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ ही जाता था, और फिर कमेंट भी दादियों जो उनके ब्राह्मणी जैसे हमारे साथ हमारी दादी प्रकाशमणि ब्राह्मणी थी, तो उनको कमेंट भी करता था। तो एक बार दादी प्रकाशमणि को बाबा ने ही कहा, हमको नहीं, सामने कहा कि निर्मला जैसी हमको 30 कुमारियां मिल जाए तो मैं स्वर्ग ऐसे जल्दी ला दूं, जल्दी से ला दूं। तो दादी ने फिर बाद में बताया, तो बाबा का जैसे निष्पक्ष प्यार होता था, जो कोई भी है कैसा भी है, बहुत अच्छी रिश्ते बच्ची क्या है कैसे है सफर ठीक रहा, फिर समझो ऐसे पूछते रहते थे। तो जैसे हमको यही फील होता था कि यही हमारा सच्चा पिता भी है, शिक्षक भी है, गुरु भी है। तो समझो हमारे लौकिक प्यार का भी हमारे पर विशेष प्यार था। हम 6 बहनें और 2 भाई थे, फिर भी मैं पढ़ाई वगैरह में होशियार थी तो मुझे स्पेशल अटेंशन देता था, और जो भी कुछ बातें होती थी तो पहले हमको बाहर जाना था, घूमने जाना होता था, पिक्चर पे जाना होता था, तो पहले हमारा टर्न लगता था, बाद में दूसरे भाई बहनों को पूछते थे, क्योंकि कार में तो 5-6 जने से ज्यादा तो नहीं आ सकते हैं, और हम 8 भाई बहन हैं और 2 माँ बाप, तो सब तो साथ में सब स्थान पर नहीं जा सकते थे। परंतु उनके होते हुए भी जैसे ब्रह्मा बाबा से ऐसे फील होता था यही सच्चा माँ बाप है हमारा, और उनसे लेना देना भी बहुत सहज होता था। कभी भी कोई भी बात होती थी तो चाहे मम्मा है चाहे बाबा से है, हम पूछकर अपने मन का समाधान कर सकते थे, तो इसलिए हल्कापन भी रहता था और बाबा की प्रेरणाएं भी मिलती रहती थी। तो जैसे उन दिनों में प्रदर्शनियां शुरू हो गई थी 64 से, तो बाबा क्या करते थे, क्योंकि बम्बई में पहली प्रदर्शनी हुई तो हमें गाइड के रूप में ट्रेनिंग मिल गई, तो जहाँ भी प्रदर्शनी होती थी तो मुंबई के गाइड्स को बुलाते थे कि गाइड्स आवे, तो बड़ौदा अहमदाबाद कलकत्ता आदि आदि प्रदर्शनियाँ हुई तो बाबा नाम से लिखते थे पत्र के फलाने फलाने जावे सेवा के लिए। और जब कलकत्ता में प्रदर्शनी थी तो हम समझती हूँ देरी से हमको पता लगा, तो बाबा ने देरी से पत्र लिखा कि निर्मला जावे प्रदर्शनी में, और उस समय ट्रेन की टिकट मिलना मुश्किल था और टाइम भी थोड़ा था, तो मैं और आशा उषा बहन की बहन लौकिक आशा हम दोनों फ्लाइट से कलकत्ता गए। बम्बे से कलकत्ता फ्लाइट से प्रदर्शनी में मदद करने गए। तो उन दिनों में इतने कोई ब्राह्मण कोई फ्लाइट से ट्रेवल नहीं करते थे। जब मम्मा ने भी शरीर छोड़ा 64 में, तो जो बम्बई से लोग आए सारे ट्रेन से आए, दौड़ दौड़ के आए, परंतु ट्रेन से आए, और हम फ्लाइट से कलकत्ता गए। तो सब कहा ये लोग तो फ्लाइट से आए हैं कलकत्ता में। तो उन दिनों में तो अव्यक्त बाप दादा किसी भी संदेशी के तन में भी आते थे, तो संतरी दादी वहाँ उनके तन में आया, तो बाबा ने फिर हम लोगों को खास खातरी की फ्लाइट से आए थे। तो इसी रीत से ब्रह्मा बाबा ने हमें आगे भी बढ़ाया, सेवा का चांस भी दिया, और उन दिनों में झाड़ त्रिमूर्ति के चित्र आत्म प्रकाश जी दिल्ली में कृष्णा नगर में बनाते थे, वहाँ बनवाते थे, सारे पेंटिंग करवाते थे, सारा दिन चित्रशाला में वही काम चलता था, आर्टिस्ट बैठकर चित्र बनाते रहते थे और नए सेंटर भी शुरू होते रहते थे। तो सब क्यों लगती थी, क्योंकि प्रदर्शनियों के चित्र भी बनवाने थे और ये चित्र भी बनवाने थे, तो क्यों लगती थी। तो ब्रह्मा बाबा ने खास चिट्ठी लिखकर हमारे लिए जल्दी जल्दी पिक्चर बनवाए दिए। सेंटर शुरू हुआ जो 66 में सेंटर हुआ कांदिवली का शुरू, तो बाबा ने खास बनवा के दिए। तो समझो बाबा का अति स्नेह और ये रहा शुरू से ही। तो जब बाबा 69 में अव्यक्त हुए तो हम सेंटर पर थे, मेरे साथ 2 बहने भी थी, तो 16 उस समय रात को ब्रिजेंद्रा दादी का फोन आया कहीं निर्मला ड्रामा पर स्थित हो, स्टेबल हो। फिर विजेंद्रा दादी ने समाचार सुनाया, तो समाचार सुनते ही हम तो योग में बैठ गए और मतलब दुख तो हुआ कि बाबा चला गया, अव्यक्त हो गया। फिर हमारी दो साथी बहनें थी, उन्होंने कहा हम तो चल रहे मधुबन सवेरे पहली पहली ट्रेन पकड़ के, वो तो चले गए। और मेजोरिटी बम्बई के सब टीचर्स, मेन मेन टीचर्स थी, मधुबन आने के लिए निकल गई। बाकी मैं और शिलेंद्रा दादी बम्बई में रहे। हमने कहा कि दूसरे दिन स्टूडेंट्स को सारा समाचार सुना ना, उनको आश्वासन देना कोई तो चाहिए। तो हम दोनों बाद में निकले। तो फिर अच्छी का 19 या 20 तारीख को दादी जी का यहाँ से फोन आया कि आप दोनों भी आ जाओ। तो फिर हम दोनों 21 सवेरे यहाँ पहुँचे अंतिम क्रिया के जस्ट पहले। तो फिर अंतिम क्रिया के समय नेचुरली 18 जनवरी 69 में पहली बारी मधुबन में जनवरी में 700 भाई बहने इकट्ठे हुए उस समय। तो बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। और उस समय नेचुरली है काफी लोगों को दुख हुआ। हमने देखा कई भाई भी रो रहे थे, मुख्य मुख्य भाई। तो नेचुरली थोड़े तो आंसू आएंगे ही। परंतु जब शाम को अव्यक्त बाप दादा द्वारा संदेश आया, सारा क्लियर हो गया। मुरली कैसे पढ़नी है, रिवाइज करनी है, अव्यक्त बाप दादा से कैसे मिलन मनाएंगे और कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो 21 शाम को सभी हल्के हो गए। क्योंकि नहीं तो सबको मन में यही सवाल था, हमको मुरली कैसे मिलेंगे, अब ये बाबा अव्यक्त हो गया। तो बाबा ने एक कमाल ये की कि आप समान भूतों को बना दिया। जो भी दादियां थी सबको इतना मजबूत कर दिया था। और विशेष संयोग जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो नेचुरली बाबा को मम्मा बाबा का दोनों का पाठ बजाना पड़ा। और साथ साथ इतना ज्ञान योग में मजबूत कर दिया, जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो निर्मल शांता दादी और ब्रिजेंद्रा दादी ने एक आंसू नहीं बहाया। दादी जी ने भी दो दिन तो बहुत अपने आप को संभाला, पर मैं समझती तीसरे दिन स्टेज पर दादी ने आंसू बहाया। तो सारी सभा सब आंखों में आंसू आ गया। परंतु दादी दीदी ने अच्छी रीत से यज्ञ संभाल लिया। जो चेत पहले एक साल तक सब कहते रहे, हाँ ब्रह्मा बाबा हमारी ऐसे पालना करते थे, ऐसे करते थे, दीदी दादी ऐसे है, मतलब भेंट करते रहे। परंतु एक दो साल के बाद सभी कहे अभी हमें दीदी दादी से मम्मा बाबा की ही वासना आती है। तो ऐसे बाबा ने हर एक को इतना तैयार कर दिया। और शुरू से बाबा ने उनको क्लास कराने का, कोर्स कराने का, भाषण करने का, पब्लिक प्रोग्राम अटेंड करने का उनको ही आगे किया। न सिर्फ किया परंतु क्या करते थे, जब भी दादियां कहां भी जाती थी भाषण लिखकर देता था या पॉइंट्स देता था, मुरली में देता था या पत्र द्वारा, तो उनको भाषण करने के लिए तो तैयार किया। परंतु एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन दोनों ने बाबा मामा को इतना फॉलो किया, जो अभी तक भी यज्ञ जैसे बाबा ने सिस्टम चलाई ऐसे चलती रही। और बाबा का कार्य आप देख रहे हैं, 40 साल के बाद भी कितना वृद्धि को पाया है। तो आज सवेरे की जो मुरली थी वो हमारे सामने अव्यक्त बाप दादा ने पांडव भवन के बाबा के कमरे में चलाई थी। हम सात ही जन बाबा के सामने थे उस समय, 5 हम जाने वाले, रमेश भाई, जगदीश भाई, मैं, रोजी बहन, शिव दादी, प्रकाशमणि दादी और रतनमणि दादी, सात के सामने ये सारी मुरली चलाई और साथ में बातें, फिर पर्सनली भी हम सभी से बातें की। तो मतलब बाबा ने खुद ने तो तैयार किया व्यक्त रूप में, परंतु अव्यक्त रूप में भी जैसे हम गाते हैं कि अव्यक्त रूप में भी आप ऐसी ही पालना कर रहे हैं, और इसलिए आप लोगों को भर साकार की पालना नहीं मिली, परंतु अव्यक्त की और दादियों की ऐसी ही पालना मिल रही है। क्योंकि दादी भी, जानकी दादी भी हमेशा लक्ष्य रखती है कि जो हमें पालना मिली है हमें सभी को देनी है। तो इसलिए दादियां भी लक्ष्य रखती है कि जो हमें मिला है आपको सभी को जरूर मिले करके अभी अव्यक्त रीति से बाबा का प्यार और पालना खींचने का पाठ चल रहा है। ओम शांति।